हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 37 एंड 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। भीष्मदेव अत्यंत ही सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। प्रथम स्कंद नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। अब क्योंकि भीष्म देव के इस संसार में अंतिम घड़ियां चल रही हैं, अंतिम समय चल रहा है और वो समय आ गया है जिस समय की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण दिशा में है और अब वो अपने देह को त्यागना चाहते हैं। वो भगवान को कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनोलसन् मुखाम्भुजो ध्यानपथश चतुर्भुज। हे भगवान, अब मैं अपने इस कलेवरम को, अपने शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ। आप कृपा करके सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम, आप कृपा करके यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि मैं इस शरीर का परित्याग न कर दूं। और यूं ही मंद मंद मुस्कुराते हुए चतुर्भुज स्वरूप में आपका ध्यान करते हुए मैं अपने इस भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहता हूँ। यानी वो जानते थे कि अब आत्मा अगले सफर की ओर जा रही है। तो इन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में एक्सपीरियंस किया था। भीष्म पितामह की आयु इस समय 400 वर्ष के थे वो, और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था, बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ सीखा था अपने जीवन से। लेकिन अंतिम समय में बहुत बड़े राजा थे वो, पूरा हस्तिनापुर उनके इशारे पर चलता था। पूरे हस्तिनापुर जो है वो संपूर्ण पूरे विश्व की राजधानी था और उनके मुख्य जो थे वो भीष्म पितामह थे। उन्होंने बहुत सारे पीढ़ियां देखी थी, बहुत सारा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, बहुत सारा धन, बहुत सारा यश, बहुत सारा फेम, बहुत सारा उन्होंने ऐश्वर्य प्राप्त किया था। लेकिन वो जानते थे कि ये सब किसी काम का नहीं है, ये सब किसी मेरे काम नहीं आएगा और इसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। वो जानते थे कि केवल कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण के दर्शन, इसी से मेरी सदगति होगी। तो वो सब कुछ याद नहीं आ रहा उनको अंतिम समय में, उस सब के विषय में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि भगवान को कह रहे हैं, आप कृपया यहीं रुकिए जब तक कि मैं इस भौतिक शरीर का परित्याग न कर दूं। और दुर्योधन ने बहुत कुछ युधिष्ठिर महाराज ने बहुत कुछ पूछा था उनसे विविध धर्मों के विषय में, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सबके विषय में बताने के बाद जब उन्होंने देखा अब अंतिम समय बहुत निकट आ गया है, तब युधिष्ठिर को बोला कि बस अब मैं मजीद कुछ नहीं बोलना चाहता, अब अपनी इन समस्त इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहता हूँ। मुख यदि बोलेगा तो केवल कृष्ण के विषय में, कर्ण यदि सुनेंगे तो केवल कृष्ण के विषय में, नेत्र यदि देखेंगे तो केवल कृष्ण को, कृष्ण के अतिरिक्त न मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, न देखना चाहता हूँ, न कुछ बोलना चाहता हूँ। क्योंकि बाकी जितने भी धर्म मैं आपको अभी तक बता रहा था वो तो सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित है, परंतु अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के विषय में सोचना चाह रहा हूँ और मेरी आत्मा का कल्याण केवल और केवल कृष्ण के विषय में बोलने से, कृष्ण के विषय में श्रवण करने से, कृष्ण के दर्शन करने से होगा। वो भीष्म पितामह आज हमें ये सिखा रहे हैं कि चाहे हम जिंदगी में कितना ही ज्यादा सक्सेस क्यों न प्राप्त कर लें, हमारा साथ यदि कोई वास्तविक हमारे साथ यदि दूसरे अगले सफर तक को जाता है तो वो केवल और केवल कृष्ण से संबंधित विषय ही जाता है। बाकी हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, जो कुछ धन अर्जित किया है, जो कुछ यश अर्जित किया है, वो सब हमारे काम नहीं आएगा। इसे भीष्म पितामह पहले ही भगवान को कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वित्रिष्णा। अभी मैं तृष्णा रहित मति आपको समर्पित करता हूँ, मेरी बुद्धि में अब और कोई तृष्णा बाकी नहीं रही है, केवल आपके श्री चरणों की अभिलाषा है, आपकी शरण में आने की एकमात्र अभिलाषा है। तो मैं अपनी इस मति को वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जीवन में जो मुझे वास्तविक सार पता चला है वो क्या है कि कृष्ण ही है, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी सार नहीं है। तो मैं अपनी सारी बुद्धि जो है वो आपको समर्पित कर रहा हूँ, भगवती सात्वत पुंग विभुमनी, क्योंकि आप भगवान हैं और सात्विक श्रोमणी हैं, भक्तों के रक्षक हैं, बहुत महान हैं। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, आप अपने अप्राकृत सुख में रहने वाले हैं। आपको भौतिक वस्तु से कोई कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कुछ प्राप्त करते हो, आनंदित होते हो, स्वतः आनंद स्वसुखम, आप अपने आप से आनंदित होते हो। प्रकृतिम उपेयुषी यथा प्रभाव, इस संसार में जो कुछ भी है वो आपके द्वारा ही रचा है, आपने ही इस संसार की रचना की है। परंतु इस रचना से आपको कोई आसक्ति नहीं है, आप तो अपने आप में आनंदित रहते हो, दिव्य आनंद का लाभ करते हो। और भगवान को युद्ध क्षेत्र के प्रारंभ वाले दिन के विषय में याद कराते हुए कल भीष्म पितामह ने भगवान को कहा, सपदि सखवचे निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखी रते ममास्तु। अपने जो आपके मित्र थे यानी अर्जुन, उसका आदेश सुनते ही युद्ध भूमि में तुरंत ही रथ को मध्य में स्थापित कर दिया, और विपक्षी दल के जितने भी सैनिक थे उनकी आयु का हरण कर दिया। ऐसे पार्थ सखी में, पार्थ सखी रते ममास्तु, मेरी मेरी रति, मेरा प्रेम ऐसे पार्थ सखी में सदैव बना रहे। और आगे कहा, व्यवहित पितना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाति मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। जब अर्जुन ने उन सबको देखा, स्वजनों को जब देखा, तो उसकी बुद्धि में दोष आ गया। कुमति 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 हरत, यानी कि कुमति को हरा। अर्जुन की कुमति क्या थी? अहम हंता। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ, मैं अपराध का भागी बनूंगा। और भगवान ने क्या कहा? कुमतिम अहरदात्मविद्या, आत्मविद्या से गीता का उपदेश देकर ना केवल भगवान ने अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि संसार विजय भी दिला दी। वास्तव में ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि आप जो भी कार्य करते हो उससे आपको क्या लाभ पहुंचता है, ये यदि आप सोचकर कार्य करोगे तो फिर वो कार्य आपके बंधन का कारण बनेगा। लेकिन यदि आप ये सोचकर कार्य करोगे कि मैं इससे कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मुझे इससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इसका मुझे कुछ भी करना नहीं है, बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यदि मैं कार्य करता हूँ, यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग परम। भगवान ने कहा यज्ञ के लिए कार्य करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कर्म बंधन का कारण बनेंगे, और अगर तुम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हो तो बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो ये भगवान की अति अनुकंपा है कि अपने मित्र को भ्रमित कर दिया, मोहित कर दिया, और उसके द्वारा हम सबको ये संदेश श्रीमद् भगवद गीता का सुनाया। और उसके बाद आज भीष्म पितामह अत्यंत ही सुंदर बात कह रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ श्लोक उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ दितरथ चरणोऽभ्ययाच्चलत्को हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्त धृतरथचरणो भयाच्चलात् कु हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलत्कौ हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतोरथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलत्कु हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलत्कु हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाच्चलत्कु हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय। यहाँ पर भीष्म पितामह भगवान की महानता के विषय में अधिक बता रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं, हम पर तो आपने परम अनुग्रह किया, मेरे पर जितना आपने अनुग्रह किया उतना तो शायद किसी के ऊपर नहीं किया। स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगमम यानी स्व का मतलब होता है अपनी और निगमम का मतलब होता है प्रतिज्ञा या सत्यनिष्ठा, कि अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया, अपहाय। अपहाय मतलब तोड़ दी, निरस्त करने के लिए, यानी कि अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी जानते हैं? भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि कुछ भी हो जाए मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षण में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को क्या करने के लिए, ऋतम अधिकर तुम, अधिक करने के लिए। ऋतम का मतलब होता है वास्तव में मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक करने के लिए। कर तुम अवप्लुत यानी नीचे उतरते हुए। अब उन्होंने क्या किया था, रथस्थ, जैसे ही भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को अवश्य हथियार उठवा के रहूंगा। ये क्यों की थी, अभी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। मैं श्लोक को बता रही हूँ, श्लोक का वर्ड्स को देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपने, मेरी प्रतिज्ञा को बढ़ाने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा को ज्यादा सम्मान देने के लिए आप अकस्मात रथ से नीचे उतरे और साथ में क्या उठाया, धृत रथ चरणों। धृत मतलब धारण किया, जिस तरह से भगवान सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं उसी प्रकार से धृत रथ चरणों, चरणों पैर को बोलते हैं, और रथ का जो पहिया होता है ना उसको भी बोलते हैं रथ का चरण है ये। तो जैसे ही रथ के चरण को भगवान ने धारण किया और भयात चलत को, यानी कि और फिर क्या करने लगे, तेजी से। अब भयात का मतलब बहुत तेजी से, चलत गु यानी पृथ्वी पर जोर जोर से चलने लगे। एक तो सबसे पहले क्या किया, रथ का जो टूटा हुआ पहिया था उसको उठाया और जोर जोर से चलने लगे। हरि रिवहन्तुमिमं गतोत्तरीय, अभी वो यहाँ पर भगवान को अपनी भगवत्ता भूल गए। पूरी पृथ्वी का पहले से ही भगवान ने अपने ऊपर बोझ धारण किया हुआ है और उसी भगवान के आवेश में उन्होंने, वो धरती पर चल रहे थे और ऊपर से उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया था। तो फिर क्या हुआ, हरिरिव हंतुम, हरि एक मतलब होता है सिंह, तो हरि इव मतलब सदृश सिंह की तरह, हंतुम मारने के लिए, और इभम का मतलब होता है हाथी को, जिस तरह सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है उसकी ओर, उसी तरह आप मेरी ओर झपट रहे थे सुदर्शन चक्र लेकर। और गतोत्तरीय का मतलब होता है एक ओर छोड़कर, आपका जो उत्तरीय है भगवान ने जो पीताम्बर पहना हुआ था, उत्तरीय का मतलब होता है पीताम्बर या दुपट्टा जो भगवान पहनते हैं ना, वो क्या हुआ पृथ्वी पर, और उनको भगवान को ये होश भी नहीं। उत्तरीय गतोत्तरीय यानी कि आपका पीताम्बर जो है वो धरती पर गिर गया, मतलब धरती माता इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि अब क्या होगा, भगवान जो है वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं भीष्म को मारने के लिए, अपने भक्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी को सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपने पीताम्बर को जमीन पर गिरा दिया कि आप फिक्र मत करो, ये तो भक्त और भगवान का खेल है। और यहाँ पर दोनों ही आनंदित हो रहे हैं, भीष्म पितामह और उनके भगवान कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रेम का युद्ध करके आनंदित हो रहे हैं। वास्तव में हमें ये सब कुछ नहीं दिखता क्योंकि हमारे अंदर जो है ये सारी इतनी शुद्धता नहीं है, लेकिन आचार्यगण बहुत ही सुंदर इस युद्ध के विषय में बता रहे हैं। उस दिन ऐसा युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, इतना भयानक युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन को बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वो बारंबार बाण चला रहे थे, इतना तेजी से बाण चला रहे थे, अर्जुन को इतना पसीना आ रहा था, अर्जुन भी जल्दी जल्दी बाण चला रहे थे, धड़ाधड़ युद्ध हो रहा था, तो बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी दोनों को। एक बार बस जरा सा सांस लेने के लिए, ऐसे करने के लिए अर्जुन रुके, उनको बहुत पसीना निकल रहा था, तो ऐसे थोड़ा सा अपने आप को सेट किया, तब तो भगवान ने देखा कि अभी उन्होंने, भगवान ने उनको कहा, अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह तो भीष्म तुम्हें मार डालेंगे। बस इसी पर वो रथ से कूद पड़े और मतलब अर्जुन को बचाने का नाटक कर रहे थे। बोले अब तो लगता है अर्जुन वो भीष्म तुम्हें मार डालेंगे, अर्जुन को मार डालेंगे, ये सोचकर वो नीचे उठे, इसीलिए रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। उस समय भगवान की कीर्ति बजाने के लिए, भगवान की इज्जत का मान रखने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा ना टूटे उसको बचाने के लिए अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और बोले केशव मैं युद्ध करूंगा, ठीक से युद्ध करूंगा, आप ये क्या कर रहे हो, आपने तो प्रतिज्ञा ली है, आप ये क्या कर रहे हो, फेंकिए रथ के चक्कर को, फेंकिए, देखिए आपकी कितनी बदनामी होगी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन भगवान अर्जुन को घसीटते हुए जा रहे थे और कृष्ण बोले थे नहीं नहीं, आज अगर मैं इसका वध नहीं करूंगा तो वो तुम्हारा वध कर देंगे। और इस तरह अर्जुन जो है वो घसीटते हुए कृष्ण के पीछे पीछे जा रहे थे। अब अर्जुन में क्या ताकत थी कि वो कृष्ण को रोक सके, और इसी बात को यहाँ पर भीष्म पितामह याद करा रहे हैं। अनुवाद देखिए, भीष्म कह रहे हैं मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठाया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गिर गया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें वो दृश्य दिखाएंगे, कृपया साथ साथ में देखिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही मानो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध नहीं अपितु खिलवाड़ हो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कोई नाटक हो रहा है। दुर्योधन ने भीष्म देव की आलोचना की और दोष आरोपण किया कि वे अर्जुन को पितृवत स्नेह के कारण मारने से हिचकते हैं, अतः भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडव का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। यानी कि अब क्योंकि जब भी युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह, तो सामने अर्जुन से इतना प्यार करते थे भीष्म पितामह कि स्नेह आड़े आ जाता था,
और फिर दुर्योधन देखता था। दुर्योधन ने कहा कि अगर आपको लड़ाई करनी ही नहीं थी तो आप शुरू से आते ही ना, आपके भरोसे पर हम लोगों ने लड़ाई की है और आप अपना यहाँ पर युद्ध भूमि में प्रेम झलकाते रहते हो पांडवों के ऊपर, तो बहुत ज्यादा दोष। हालांकि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मारते थे, काउंट करके मारते थे, लेकिन फिर भी अब दुर्योधन देख रहे थे कि मेन सेना नायक तो मर ही नहीं रहे, पांचों पांडव तो सुरक्षित हैं, तो फिर उसको बहुत दुख हो रहा था। तो भीष्म को जाके बोला कि आप उनसे इतना स्नेह करते, तो भीष्म ने उस दिन प्रतिज्ञा की कि कल जो है वो मैं पांचों पांडवों का वध करूंगा, मार डालूंगा, नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। यानी कि अब कृष्ण अगर बीच में आ गए फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं पांचों पांडवों का वध करूंगा। तो इससे दुर्योधन संतुष्ट था और उसने अपने पास वह तीर ले लिया जिससे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। यानी कि एक तीर उठाया था उसने जो कि सबको मारने के लिए उसको मिला था, वो उसने उठाया, लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से वह तीर प्राप्त कर लिया और भीष्म देव को यह समझते देर न लगी कि यह कृष्ण की चाल थी। अब दुर्योधन का तीर जो है वो कृष्ण क्या करते थे, भले लड़ाई नहीं करते थे लेकिन अब वो चालबाज तो हैं, ऐसी ऐसी चालें चलते थे कि दुर्योधन से वो तीर उन्होंने ले लिया। अतः भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र धारण करना होगा, अन्यथा उनका मित्र मारा जाएगा। बोला अब तो कृष्ण को मतलब अगले दिन में जरूर कृष्ण के मित्र कौन, अर्जुन को मार डालूंगा, नहीं तो फिर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। अब भीष्म पितामह जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान से हथियार उठवा के रहूंगा। भगवान ने बोला मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन भीष्म ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन प्रायः हार चुका था, परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। मार रहे थे, बार बार मार रहे थे, तीर मार रहे थे, अर्जुन इतना थक गए थे, सांस लेने के लिए रुके। अब दूसरी तरफ से तीर आता तो जाहिर सी बात है वो अर्जुन को मार डालता, अर्जुन को लग जाता। तो यहाँ पर लिखा हुआ श्री प्रभुपाद जी कहते दूसरे क्षण मारा जाने वाला था अर्जुन। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रख कर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ये भगवान की कितनी करुणा है कि वो अपने भक्त का मान कभी भी नहीं डालते। अपने भक्त का सम्मान, अपने भक्त की प्रतिज्ञा की का मान रखना, यहाँ पर भीष्म पितामह कितना सुंदर कह रहे हैं कि ऋतम अधिकार तुम अवाप्लुतो रथोस्त, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक कर दिया, मेरी प्रतिज्ञा का मान रखा, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भक्त की प्रतिज्ञा जो है वो बनी रहे। ऊपर से ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी क्षण किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं जमाऊंगा, बल नहीं आजमाऊंगा, भगवान ने कहा था नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्म देव पर तेजी से उसी तरह झपटे जिस प्रकार सिंह हाथी पर झपटता है। इससे रास्ते में उनका दुपट्टा गिर गया और उन्हें उसका भी होश ना रहा। तब भीष्म ने तुरंत ही हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध तत्क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निस्संदेह अर्जुन की मृत्यु का कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे, लेकिन चूंकि भीष्म देव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार धारण करें, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्म देव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रह गए कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया, वह सामने खड़े थे और भगवान को भीष्म पितामह कहते हैं, कितने आप करुणामयी हो मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो मैं चाहता हूँ कि आपका वह सुंदर स्वरूप जो है वो सदैव मेरे नेत्रों के सामने रहे। आगे भीष्म पितामह कहते हैं, श्लोक नंबर 38, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। शिखह तो विशीर्ण दंश क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम विससारमत्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। शितविशिखः तो विशीर्णदंशः क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम विससारमत्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। शितविशिखः तो विशीर्णदंशः क्षतज परिलुप्त आततायिनो मे प्रसभम विससारमत्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। शितविशिखः तो, शित मतलब जो कवच था भगवान का, विशिखः तो, विशिख कहते हैं बाण से, हतो मतलब घायल हो गए थे। भगवान जो है वो उनके बाण से घायल हो गए थे, और विशीर्ण दंश मतलब उनका कवच भी टूट गया था। क्षतज परिलुप्त, क्षतज मतलब घावों से, परिलुप्त मतलब घावों से रक्त निकल रहा था। और भीष्म पितामह स्वयं को कहते हैं, आततायिनो में, देखो मैं कितना, मैं जो है वो कितना महान आक्रमणक बन गया था, कितना आतताई हो गया था। मैं आपके ऊपर बाण चला रहा था, आपका कवच भी टूट गया था, फिर भी मैं आपको बाण लगा रहा था। मेरे बाणों के कारण आपके शरीर पर घाव लग रहे थे, और क्षतज परिलुप्त, आपकी घावों से रक्त निकल रहा था, और आप इतना क्रोधित हो गए थे। प्रसम विससार मत्वद, प्रसम विससार मतलब कि आप बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए थे, और अभी सारा मतलब चलने लगे, दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, बड़ा मेरा वध करने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, मद्वदार्थम मुझे मारने के लिए आ रहे थे। स भवतु मे भगवान गतिर्मुक, वही भगवान मुकुंद जो मार कर मुक्ति देते हैं, किसी का वध भी कर दे वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसे भगवान के अंदर मेरी, मैं उन्हीं के शरण में रहना चाहता हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो, स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। उन्हीं भगवान को मैं अपने हृदय में बिठा कर उन्हीं की शरण में जाना चाहता हूँ, वही मेरी परम गति हो जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, जो मेरा वध करने के लिए आ रहे थे, गांवों से खून निकल रहा था, मेरे ही द्वारा घायल थे, और मेरा ही कल्याण करने के लिए, मेरा ही उद्धार करने के लिए, मुझे ही मोक्ष देने के लिए आ रहे थे। उन्हीं के चरण कमल का दास मैं बनूं, यह शरीर छोड़ने के बाद इसके अतिरिक्त मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है। अनुवाद देखिए, जो मोक्ष के दाता है, मुकुंद का मतलब होता है जो मोक्ष देते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण मेरी गति हो, युद्ध क्षेत्र में मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध होकर उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उनका कवच तितर बितर हो गया, और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत ही रोचक थे, क्योंकि श्री कृष्ण के कार्यकलाप अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुता पूर्ण लग रहे थे, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म के प्रति
विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि दिखने में भले ऐसा लग रहा है कि भीष्म जो है वो भगवान के शत्रु की तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे थे भगवान, और अर्जुन के साथ पक्षपात कर रहे थे, लेकिन इसमें बहुत ही रोमांचक है ये, जो बहुत अत्यंत रोचक घटना है, क्योंकि भगवान का भक्त केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता। अब भगवान आए हैं युद्ध भूमि में, भले वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो युद्ध का आनंद मिले उन्हें भी, कुछ तो युद्ध का मजा आए। क्षत्रिय आवेश में है भगवान, तो भगवान का भक्त जो होता है वो सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त शत्रु का अभिनय करता है, यानी शत्रु बनकर भगवान के साथ युद्ध करता है और भगवान को प्रसन्न कर सकता है। बस आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, फिर भगवान आपको खुद ही यूज करेंगे कि मुझे किस तरह से प्रसन्न होना है। वो भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करते, भगवान की इच्छा थी युद्ध में आनंद लेने की, तो फिर भगवान ने भीष्म के मन में ऐसा किया कि वो बहुत ज्यादा जोर से लड़ाई कर रहे थे, और फिर भगवान जो है वो नाटक कर रहे थे, मतलब अर्जुन को बचाने का नाटक करके बोले अब तो लगता है कि अर्जुन को मार डालेंगे, इसलिए रथ का पहिया उठाया, भीष्म को मारने के लिए बलात् उनकी ओर दौड़े उनका वध करने के लिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंद। श्रीला प्रभुपाल जी कहते हैं परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। अजित का मतलब है जिनको कभी जीता ना जा सके। तो भगवान को किसी से हानि नहीं पहुंच सकती, भगवान का कोई शत्रु होता नहीं है, लेकिन यदि कोई अपने आप को भगवान का शत्रु बना भी ले तो भी ऐसा नहीं है कि वो भगवान से जीत सकता है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से ललकारता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के आचरण है भक्त तथा भगवान के मध्य, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्त की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो शुद्ध भक्त जो है भगवान के साथ किसी भी तरह से आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन जिन जो साधारण लोग होंगे वो क्या सोचेंगे कि देखो भीष्म के बाणों से भगवान कितना क्रोधित हो गए, वो अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गए, भगवान के शरीर से भी खून निकल रहा है, ये इसको आप भगवान बोल रहे हो? तो श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भीष्म ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से छलनी कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशः सर्वत्र योग माया समाहिता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मैं कभी भी मूर्खों और अल्पज्ञों के समक्ष नजर नहीं आता हूँ, मैं अपनी योग माया के द्वारा ढक जाता हूँ, इसलिए वो नहीं समझ सकते कि मैं अव्यय हूँ, मैं परम पुरुष हूँ। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भगवान इस तरह के काम करते रहते हैं जिससे मूर्ख लोग और भी ज्यादा मोहित हो जाते हैं। पूर्ण तथा दैवी शरीर कभी भी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। भगवान का शरीर कोई हम जैसा साधारण हाड़ मास से बना हुआ नहीं है, वो कभी भी घायल नहीं हो सकता, लेकिन भगवान जो है वो ऐसी लीला करते हैं, भगवान की लीला से आनंदित होना चाहिए, उन पर प्रश्न आरोप नहीं करना। भगवान के शरीर में आप तो कहते हो कि आध्यात्मिक है, तो फिर उसमें से खून कैसे निकला, रक्त कैसे निकल रहा था, भगवान अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते हैं, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान की मर्जी है, वो भगवान है, भगवान चाहे अपनी प्रतिज्ञा करें
और चाहे अपनी प्रतिज्ञा तोड़े, अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखे। भगवान की मर्जी, भगवान पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो केवल और केवल आनंद देना जानते हैं, आनंद करना जानते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता, यदि ऐसा होता तो भीष्म देव उन्हें भगवान उन्हीं भगवान को अपनी अंतिम गति के रूप में ना चाहते होते। ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ उन्होंने ये नाटक किया तो अब बस भगवान भीष्म पितामह के शत्रु बन गए। अगर ऐसा होता तो वो ऐसे क्यों बोलते सभवतु भगवान गतिर मुकुंद। वही भगवान मैं चाहता हूँ कि अंतिम गति बने मेरी, उन्हीं भगवान जो कि मेरे लिए मेरा वध करने के लिए आ रहे थे, रथ का पहिया उठाया था, जिनके घावों से रक्त निकल रहा था, मेरे आक्रमण से जिनका कवच भी टूट गया था, वे भगवान कृष्ण मेरी परम गति हो। अगर वो भगवान को नहीं जानते होते, भगवान के परम भक्त ना होते तो ऐसा सोचते, बल्कि ऐसा सोचते ना ये भगवान तो वैसे ही मेरी तीरों की से घायल हो गए थे, इनकी गति क्या चाहूं मैं। लेकिन भगवान के भक्त भगवान की लीलाओं में सहयोग करते हैं, परंतु उनका पूरा समर्पण होता है भगवान के प्रति। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि भीष्म देव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते, उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म देव के समक्ष आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा अपने भक्त द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्म देव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्म देव की ओर उसी तरह चल पड़े, उसी तरह बड़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए दौड़ता जाता है। ऊपर से उनका संकल्प भीष्म देव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं, निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे मनवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्म देव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर अंत में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि निर्विशेषवादी सोचते हैं कि बस अभी भगवान हमें कोई स्वरूप की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मोक्ष चाहते हैं, सायुज मुक्ति आपके अंदर समा जाना चाहते हैं, हमें किसी स्वरूप को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर भीष्म देव जो कि 12 महाजनों में से एक हैं, ज्ञान के भंडार हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो क्या चाह रहे हैं, भीष्म देव भगवान के स्वरूप को देखने की इच्छा करते हैं। भगवान को कहते हैं सभवतु मे भगवान गतिर मुकुंद। यही भगवान जो कि मोक्ष के दाता हैं, वे भगवान श्री कृष्ण मेरी परम गति हो, कृष्ण के अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं कृष्ण के अंदर समाना नहीं चाहता, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सारे शुद्ध भक्तों की ऐसी इच्छा होती है कि मैं कृष्ण के दर्शन करूं, कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान करूं, कृष्ण के साथ मैं प्रेम का संबंध निर्माण करूं, कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण के साथ रहूं। अकेले शून्य में जाना भक्त नहीं चाहते। भक्त सायुज मुक्ति जिसको कहा जाता है आत्महत्या, वास्तव में आत्महत्या जो यहाँ पर संसार में करते ना, वो आत्महत्या नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो इस तरह से मरती नहीं है, नहीं मरती है ना, वहां से तो सिर्फ शरीर मरता है और आत्मा जिंदा रहती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। लेकिन निर्विशेषवादी क्या करते हैं, अपनी आत्महत्या की करते हैं। है ना, सुसाइड, मतलब स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं उसको, क्योंकि वो अपनी वास्तविक स्थिति को ना पाकर, वास्तविक जो हमारा संबंध है कृष्ण का, उसको ना पाकर वो शून्य में जाकर मिल जाना चाहता है, अपने अस्तित्व को खो देना चाहता है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करना चाहते, भक्त भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।